गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
फिर परमात्मा आते हैं और हमें अपनी महिमा आप ही बताते हैं और स्वयं ही वो विधि बताते हैं जिससे वो लाभ दे सकते हैं और फिर कभी अपने दास को भेज देते हैं। उसमें एक नए सिरे से समाज प्रारंभ होता है, नए सिरे से भक्ति प्रारंभ होती है और जिस कारण से फिर पूरे समाज में शांति, बुराइयां दूर हो जाती हैं, शांति हो जाती है और जीव का कल्याण होता है। परमात्मा की महिमा अपनी वाणी में गरीबदास जी महाराज बताते हैं। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस पर राम माने परमात्मा। हम अपनी अज्ञानता के कारण जो भी राम शब्द हम सुनते थे तो हमने के मान रखा था कि श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ राजा अयोध्या। हम राम शब्द से श्री रामचंद्र जी को ही भगवान रूप में मान लेते थे। राम का अर्थ आपको हमने कई बार समझाया है और फिर बताते हैं। राम का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, अल्लाह खुदा, गॉड, रब। तो जो भी जितना स्वामी है, जितना प्रभु है, जितना मालिक है, वो उतना राम अवश्य है। जैसे एक ब्रह्मांड में एक विभाग के राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के, और 21 ब्रह्मांड में ये ज्योति निरंजन राम, भगवान कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ईश कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, 7 संग ब्रह्मांड का राम पर ब्रह्म है अर्थात अक्षर पुरुष, और असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर रमता राम सर्वगतम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म वासुदेव, वासुदेव कहो, रमता राम कहो। वासुदेव का अर्थ होता सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, जो सब जगह व्यापक है, जिसकी सत्ता, उसको वासुदेव रमता राम कहा जाता है। तो क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस परमात्मा की कहानी कथा अब तो सुन मेरे ते, तुम्हें बताते हैं। वो रमता राम जपोरे प्राणी अर्थात हम अन्य भगवानों की पूजाएं किया करते थे। उन पूजाओं से प्रथम तो वो पूजा बताने वाले गुरुजी पूर्ण नहीं थे, जो उन भगवानों का भी लाभ हमें नहीं दिला सके, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अब गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में गुरु बन गए और वो अपनी साधनाएं बताते रहे, उनसे कोई किसी को लाभ हुआ नहीं। अंत में फिर हम यहां पर आ गए, चौराहे पदर दे, बार ली की बोल दे, भीतर ली की रख दे, हैं? तारा जो डाला बाबा रुस गया, श्याम जी रुष्ट हो गया तुम्हारा, हैं? ओई कमोई कर दे। ऐसी साधना पे हम आकर डट गए। परमात्मा बताते हैं कि अप लिप अप पोते अप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते बांगे देख अकल कहां तक होई। एक ओई देवी बनाया करते हम, देखा करते हमारी ताई दादी मां द्वार का ऊपर ऐसे भूडे जिसे उसने बनाने आते, चित्र से बना के एक औरत का चित्र बनाते और कहते हैं या ओई माता होगी, उसका आगे ज्योति लगाते, माथा टेकती, चुचकारती, क्रकू करती, और फिर उसने और फिर उसी से फिर पोते मांगती, नो कहती है देवी मुझे पोते देना, मुझे घर में सुख रखना, दूध पूत में की खैर रखना। और तेरा जो बोलियो आप पे तो वह माता बनाई, और फिर वह तुझे लोरे देगी। ऐसी हमारी पूजाएं क्यों, हम क्यों गिर गए इतना सतर, क्योंकि हमें संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु नहीं मिले। हम इन ओछी उपासनाओं पर आकर रुक गए। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरिया चावे पार। दरिया से पार जाना है, बहुत बड़ी दरिया बह रही है, और उससे पार जाने के लिए किसी उल्लू ने मूर्ख ने बता दिया के लिए या भेड़ की पूछ पकड़ ये तुझे परले पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं वो बताने वाला नालायक था, वो भी शराबी को अभी था कितने, और जो उसको भेड़ की पूछ पकड़े बैठा वो भी शराबी ही हो सकता है, मूर्ख ही हो सकता है जिसको कति ज्ञान नहीं। तो हम भक्ति मार्ग में ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं वह भेड़ की पूछ पकड़ रही है, जाना दरिया से पार है। अब एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में इसी साधना पर डटे हुए। अब एक व्यक्ति यूं कहे कि तुम डूबोगे या भेड़ भी डूबेगी, तुम भी डूबोगे, अर्थात तुम्हारी साधना व्यर्थ है और संसार सागर में तुम यहीं रह जाओगे, पार नहीं हो सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं अप लिप अप पोते और अप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे देख अकल कहां से खोई। कहां गई वो अकल तुम्हारी, कति भगवान से दूर हो गए, और ज्ञान नाम की वस्तु भक्ति मार्ग की हम अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले वा राम कहानी। कच्छ मच कूरम ना होते दौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे पान और पानी। जब कुछ भी नहीं था या सृष्टि या नीचे की ब्रह्म और परब्रह्म की कोई रचना नहीं हुई थी, तब केवल एक सतलोक था। उस समय की बात बता रहे कि तब भी तो तुम कहीं रहा करते थे, उस स्थान की खोज करो, उसको बताने के लिए मैं आया हूं। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ना थे, ब्रह्मा विष्णु महेश न होते नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। जब ये कोई भी नहीं थी, ना ब्रह्मा था ना विष्णु ना शिव ना या गौरी पार्वती माता थी, ना लक्ष्मी ना सावित्री ना ये सनक सनकादिक सनक सनंदन थे, उसमें केवल एक पूर्ण परमात्मा ही शेष थे सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक वा होते अलख बिनानी। शेष शेष मुख निज तन निस्दिन गावे रंकार निजबानी, राम नाम का सिक्का मेट डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान से दूर होकर के अपने केवल संसारिक धंधे में या माया के जोड़न जाड़न के चक्कर में गुटी छूटी ला के, और कहते हैं किसने देखा भगवान, कहते हैं राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान की सत्ता को मिटाते हैं कहते हैं किसने देखा, हैं, कहीं नहीं भगवान, कुछ नहीं रखा भक्ति में, कहते वो डूबेंगे अभिमानी। सुरते शेष सहस मुख निज दिन गावे रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। सुर 3300 सहस 88 और 84 सिद्धा, चार खान के जीव उपाय आज पुरुष की अध्या। आदि राम सोई अंत राम है, मध्य राम है सोई, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक आगा पीछा न कोई। राम कहन ते राम में होगे पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जारे लागी अजर समादम। कहते हैं परमात्मा का नाम जपने से ही जीव का उद्धार होगा। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। सेतु बंदा जब से ना उतरी, चढ़ गए पद्म अठारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। वो लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, मही रावण से मारे। दस मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, इरना कुसी उदर विदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हो बंदे होते तोलत हैं बलवारे, हा हा हो बंदे होते तोलत हैं बलबारे। गज और गरा बने बहु सागर, दस सेंस अधिकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई स्वास घटो बले हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, सुमृत है रंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, व रोवत केस उपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते छप्पन कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते छप्पन कोटि सहारे। अम्बरीश कह चले अपूठे व दुर्वासा से हारे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को कॉपी न दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तो पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मन तो पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य वो कर्ण से बाणो मारे। विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणो मारे। महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। भाई तैतीस कोटि यज्ञ में आए सेंस 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए व सेंस 88 सारे। द्वादश कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बुजारे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे। जुल्हाए के घर बालद आई वो के सो से बन जा रे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सरद ही आरे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई कंस कैसी चानोर खपामन जीतन मल अखारे। कंस केसी चानोर खपामन जीतन मल अखारे। कृष्ण को तो जस दिया ये कबीर जी साकार सारे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी दन तू सृजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे खवासी दन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीश हमारे। मन तू पाव गए अपना किया रे, भोग गए अपना किया रे। मन तू पाव गए अपना किया रे, वो चीनो अधर अधारे मन तू पावे गए अपना कियारे वो चीनो अधर अधारे। पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म का कोई पुण्य आपके साथ है, ऐसे घोर कलयुग में आपको कुछ समय परमात्मा के चरणों में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं पिछले ही पुण्य से होती हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही तप से होती हैं पूर्ण हंस मुराद। के हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं, तेरे को यहां परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है। नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को, एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं कि मैं नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते तीन तीन दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो ये काम पहले से भी अच्छा चला करता था, क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता हाथ से आटा पीसा करती, पसीना पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटे मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है, उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को और 1 घंटे में वह एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है, इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी कर सकता जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान किया करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे। अब उस पावर जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मेटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इबदास ने ढूंढ लिया सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था, ये सब विधि विधि हमारे सदग्रंथों में, और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहां भगवान के दरबार में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं, आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाएगा जिस कारण से आप अब सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। किसी भी कारण से, किसी भी कष्ट के कारण आप यहां आए हो, वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा, और साथ में आपको भगवान मिलेगा। आपके लिए वो कष्ट, वो दुख, आपका वो भूत, वो पितर जो आपको दुखी करा करता, आपके लिए वो एक वरदान सिद्ध हो गया कि वो उसके कारण, उसके दुख के कारण आप परमात्मा की तलाश में चल पड़े। जब तक हम दुखी नहीं होते, हम भगवान की खोज नहीं करते, स्वाभाविक अपनी वही काम चला उसी लल्लो पत्तो सी भक्ति करते रहते हैं। और वो दुख आपके लिए एक बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आप परमात्मा के चरणों में आ गए। और फिर आपको डर लगेगा कहीं फिर नाम छोड़ दिया तो फिर वो देवता ना आ जाए, वो आपके लिए सदा आपका सहयोगी रहेगा। इसलिए ये कारण भी परमात्मा, वैसे तो दुखी हुए बहुत कोई पाप था आपका, और आपका पुण्य भी साथ था जो आपको यहां धक्का दे लाया, यहां आपको धक्का लाया, यहां पर खींच लाया, ये पुण्य भी था, भले ही कारण कोई पाप ही बना हो। तो पुण्यात्माओं, इस काल के रहट के कुएं में ते परमात्मा की रजा बिना जीव नहीं निकल सकता। इसी घर के संसारिक धंधे के कोल्लू में मर ही जाता है, इसको एक मिनट की चैन नहीं है। और अब देख लो, आप देख रहे हो, मैं बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सर्विस वाले भी बिजनेसमैन भी, यहां दो दो तीन तीन हफ्ता हफ्ता दिन भी परमात्मा के चरणों में रह जाते हैं और काम पहले से भी उत्तम चल रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मर रही। जीवित मरना इसी को कहते हैं कि इन्हों सोच ले अगर आज मेरी मृत्यु हो जावे तो कल इस परिवार के साथ कौन रहेगा, कौन ये बरोटे ढोएगा, कौन ये पानी भरके लाओगा, गोबर गिर का होगा, या कौन ये काम करेगा जो तू ठेका ले रहे। तो इसलिए दो तीन दिन महीने में जरूर मर जाना चाहिए अपने को, सुसाइड नहीं करना, जीवित मरना। जीवित मरण का अर्थ होता है कि वहां नो सोच ले मर गया तू, आज अब तीन दिन के लिए मर गया, और परमानेंट मर जाएंगे जब भी, वो सारा काम वहीं रह जाएगा फिर तो कुछ भी हो। तो वो तीन दिन का जो मरना हमारा, वो परमात्मा के निकट ले जाएगा। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा ने तो करना ही है, हम तो उस गाड़ी के नीचे, जैसे गाड़ी बैलगाड़ी जा रही थी उसके नीचे कुत्ता चल रहा था और उसकी पूछ, उसने पूछ लगा रखी अपनी दूम गाड़ी के नीचे, तो उसने सोचा यार गाड़ी को तू ही धका रहा है, तेरे कारण ही चल रही है। तो उस कुत्ते ने सोचा तो रुक के देख ये गाड़ी चल रहा है कि नहीं चले, वो कुत्ता रुक गया, रुक गया तो गाड़ी तो जा रही थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने व्यवस्था और न्यारी कर रखी है, गाड़ी जा रही है कुत्ता रहेगा पीछे। तो हम तो केवल दूम लगाए बैठे हैं, काम परमात्मा नहीं करना। तो इसको एक आधी बार हटा के देख लो या चल लेगी कि नहीं चलेगी, ये तो चलेगी, क्योंकि दास ने खूब, क्योंकि एक नया परमात्मा ने एक ऐसा सूर्य उदय करना था इस तत्व ज्ञान का, इससे पहले इस दास की कति ठोक ठोक हला हला के जो है ना विश्वास दृढ़ किया हर साइड से, तब इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया कि आप परमात्मा के चरणों में आओ, आपको सर्व लाभ होगा। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही परमात्मा खुद कह रहे हैं, गरीबदास महाराज जी अपने भगवान की महिमा बता रहे हैं कि समर्थ का शरणाग हो, समर्थ की आड़ पकड़ो, उसी के चरणों में पहुंचो, और कदे ना हो अकाज, कभी भी आपके घर में या शरीर में कभी कोई ऐसी कोई बुरा काम नहीं होगा, अकाज कोई भी हानि नहीं होगी, और सदा राम रंग होरी हो, राम नाम की होरी खुशी सदा बनी रहेगी। तो आपका ना जाने कौन सा पुण्य आपके साथ है, और आगे फिर ये परमात्मा ने भविष्य की जो शुभ कर्म करने की विधि आपको बता दी, और जिसको आप समझ चुके हो, इसी कारण से तो आप महीने में देख रहा हूं ये दास अब 4-5 तारीख को भी बहुत पुण्यात्मा आई थी, आज 6 दिन के बाद कल 10 तारीख से फिर मेला भर गया भगवान का, आगे 25-26-27 का अक्टूबर का फिर प्रभु का मेला है, प्रभु के ये समागम है, और रह रहकर पुण्यात्मा बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दरपाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव ऐसा दाव दाव माने बिल्कुल कोई टाइम वो है कोई समय होता है बार बार नहीं मिलती अवसर जो आज को आपको मिले हैं पूर्ण तत्व ज्ञान मिल गया पूर्ण संत मिल गया पूर्ण भगवान का रास्ता मिल गया और मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ और फिर यहां सतलोक आश्रम मिल गया इसलिए कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाव अब क्या बताना चाहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे अब जैसे ये तो यहां का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे सारे ही वो संसारिक धंधे पेट भरण का काम किया करते थे उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे शुभ कर्म नहीं कर पाते थे और जो हम शुभ मान कर कर रहे थे कोई पूजा करते थे तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ थी वो पुण्य तो एक भी नहीं बने था पापी पाप इकट्ठे हो रहे थे। पवित्र गीता श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है न उनको कोई कार्य सिद्ध होता है न उनकी गति होती है न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात व्यर्थ है। तो जो हम पूजा करते थे वो तो शास्त्र विरुद्ध करते थे और जो हम पुण्य कोई कर रही क्योंकि उसी से को पुण्य मान कर रहे थे वो तो पुण्य के स्थान पर पाप था क्योंकि हम संविधान तोड़ रखा था भगवान का और बाकी हम पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे थे तो फिर हमें हम पावेंगे क्या हम पाप ही पावेंगे हम पाप ही प्राप्त करते दुख ही दुख प्राप्त करते सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जैसे इस संसार में इस काल के लोक में ऐसी व्यवस्था है जैसे एक खेत है जमीन है उस जमीन में अगर हम कोई संवार नहीं उसको छेड़े नहीं उस एकड़ को एक एकड़ जमीन वैसे ही पड़ी है तो उसमें ना जाने कितना कुबाड़ उग जाएगा बहुत ज्यादा कितना घास फूस कांटेदार झाड़ी वो भर जाएगी तगड़ी वो तो बिना किसी प्रयत्न के होगी ना कोई पैसा लगाना पड़ा ना कोई उसमें सिंचाई करनी पड़ी ना खाद डालना पड़ा और उसी एकड़ में उसी किले में उसी जमीन में यदि हम अपने खाने के लिए कनक गेहूं बाजरा ज्वार धान उपजाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा खेत को संवारना पड़ेगा हल से या ट्रैक्टर से दो बजे चार बजे जब तक वो बीज बोने के योग्य नहीं होती उसको बार बार गुड़ाई की जाती है और फिर बीज बोना वो भी पैसे लगे बीज में और बीज बीजने के बाद फिर खाद और पानी फिर उसकी रखवाल फिर उसको काटना निकालने के लिए पैसे लगे और फिर तब कहीं जाकर के वो हमें अन्न प्राप्त होता है जिससे हमारा निर्वाह होता है और उसके विपरीत यदि हम कोई इसी प्रकार हमारा शरीर समझो मानव शरीर है इसमें पुण्य कमाने के लिए पुण्य बनाने के लिए शुभ कर्म करने के लिए हमें समय भी छोड़ना पड़ेगा समय भी देना पड़ेगा हमने परमात्मा पाने के लिए शुभ कर्म करने के लिए दो पैसे पुण्य पर भी लगाने पड़ेंगे अपना समय भी लगाना पड़ेगा तब जाकर के हमारे पुण्य शुरू होंगे प्रारंभ होंगे तब हमें कोई पुण्य मिलेंगे और इसके अतिरिक्त पाप तो अपने आप ही हो जाते हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक दिन में मारे जैसे हम ये बहन बेटियां पहले लिपा करती थी जैसे पोचा लगाते हैं अच्छे फर्श बना रखे हैं चिप्स के वगैरह प्लास्टर के पोचा लगाते हैं या पहले लीपते थे गोबर से गारा से खाना बनाते हैं, उसमें लकड़ियों में जीव जलते हैं, धुएं से अंधे होकर गिरकर मर जाते हैं। यानी ये पाप तो हमारे अपने आप हो रहे हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम अपना कार्य करते हैं उसमें भी पाप हो रहे हैं। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करते तो हमें दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। पूर्ण परमात्मा के शरण में आने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे पाप संचित होते हैं, पहले के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पुण्य शेष रह जाएंगे। और जो पुण्य करने की विधि वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुसार है, उससे पुण्य हो ही रहे हैं। और पहले जो हमारे पाप थे वो उस परमात्मा के उस नाम से नष्ट हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो जिंदगी अग्नि की ही पड़ी पुराने गासे। यही आपने देखा होगा, आपने सुना कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के, चाहे वो सत साधना कोई साधु संत करे, चाहे कोई अच्छी आत्मा करे, देव कर्तस्य, देव होते हैं हंस आत्माएं, जो पुण्य आत्मा है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीती, चाहे तो वो करें परमात्मा की भक्ति, और चाहे जनसाधारण करे, और चाहे कोई पिता करे, चाहे पुत्र करे, कोई भी करे, उस सभी के पाप को परमात्मा उस साधक के पाप को नाश कर देता है। और अभी तक हमने जितने भी इन संतों के ऋषियों के विचार सुने और पढ़े थे वो ये कहा करते थे भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, अर्थात जैसा आपने जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, आपके वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, साधना से कोई लाभ नहीं होगा, आपका जो दुख है वो दुख आएगा, सुख है वो सुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इसे हम बेसिक भक्ति करते रहते थे लेकिन कोई कष्ट का सामना करना पड़ता था वो पूरा ही हमारे ऊपर कहर टूट जाता था। तो हम ये सोचकर पड़े रहते थे कि ये तो भाई भगवान का नियम है, जैसे कर्म करेगा वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कर्म तब तक है जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण विधिवत नहीं ग्रहण करते, और जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, सतगुर शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिक सूली हो वो काटे में टल जावे। जैसे हमें फांसी टूटना हो, सूली टूटना हो, सजाए मौत हो, तो कहते हैं वो काटा लाग कर टल जाएगी, ऐसी इतना हमारे को राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में समर्पण भाव से आएंगे, अनन्य मन से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा इस परम पिता की शरण ग्रहण करेंगे, तब हमें पूर्ण लाभ ये देना प्रारंभ करेगा। तो उसके बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो हमें एक तो हम कर्म अच्छे करेंगे, वो किया कर्म ही मिलना है, हम पाप नहीं करेंगे तो पाप हमें मिलेंगे नहीं। और दूसरे जो हमारे संचित कर्म है वो कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि आपको बार बार हम दिखाते रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विशेषकर हरियाणा के अंदर महर्षि दयानंद जी का बोलबाला बहुत था। और मैं तो इस चक्कर में हूं कि उसको महर्षि की पदवी मिली कैसे, किस आधार से मिली, कोई भी स्टेटस नहीं उनका जो कि कोई सामाजिक ज्ञान हो या कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई खगोल भूगोल का ज्ञान हो, कोई राजनीति का उसमें ज्ञान हो, कुछ भी तो नहीं था, माइनस जीरो थे वो। और उनके सुनी सुनाई महिमा से हम भी इतने प्रभावित थे कि वो तो बड़े महापुरुष पड़े थे, बड़े विद्वान थे। अब उनकी थ्योरी पढ़ी, सत्यार प्रकाश जो उनकी रचना है, जैसे ये दास आपको पुस्तक लिखकर भेज रहा है, समाज में प्रवेश कर रहा है, तो वो मुझे उतना ही ज्ञान है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा प्रमाण होगा कि मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, मेरे द्वारा की रची गई वो पुस्तकें ही मेरे अंदर का ज्ञान अर्थात ये दास ही होगा। तो उन्होंने सातवें समुल्लास में लिखा है कि किसी ने पूछा कि परमात्मा की साधना से क्या भगवान पाप अक्षमा कर देगा। स्वामी जी ने कहा नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर किस लिए, फिर तो उपासना करने की आवश्यकता ही क्या है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उससे कुछ और लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये सातवें अध्याय के 155 पृष्ठ पर ये कह रहे हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना सातवें अध्याय में। और सातवें अध्याय के 151 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा एक है या अनेक है। स्वामी जी कहते हैं कि एक है, अनेक नहीं है। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक भगवान हो, अनेक ब्रह्म हो। और 154 पृष्ठ पर किसी ने पूछा परमात्मा साकार है या निराकार, तो स्वामी जी कहते हैं निराकार। और 155 पर कहते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना अपने दो सिद्धांत आप पे कैंसिल कर दिए। पुण्यात्माओं, ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी की निंदा करते हैं, नहीं। जैसे एक बार 500 रुपए का नोट नकली किसी ने छाप के जनता में ठगना शुरू कर दिया था, तो सरकार ने दोनों नोट असली और नकली आमने सामने साथ साथ समाचार पत्रों में भी छपवाए और टीवी चैनलों के माध्यम से भी उनकी पहचान जनता को कराई कि ये नकली है ये असली है। ऐसा हो तो उसको त्याग देना, वो हानि करेगा। तो हमारे जो वास्तविक नोट हैं, असली नोट हैं, वो तो हैं वेद और गीता और सवसंवेद कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी या हमारे सदग्रंथ जो भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है। और उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या ऋषि या संत का अपना विधान है, वो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो नकली है, उसको त्याग देना है। गीता जिद्ध है नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से त्यागने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हे अर्जुन, तो शास्त्रों पर ही आधारित रहना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कोई साधना प्रारंभ मत करना। अब देखिएगा सातवां समुल्लास, ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद जी रचित, और ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीना नगर पंजाब, और छपा कहां से है नीचे देखे मुद्रक, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। अब देखियो पुण्यात्माओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को ऐसा मान रखा था, ये गीता जी से भी उत्तम मानते थे हम इसको। अब पता चला ये तो निरा गोबर भरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई ज्ञान नाम की चीज सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है। ये देखना सातवां समुल्लास है, ये 151 पृष्ठ है। नीचे आइए, किसी ने प्रश्न किया, ये देखिएगा प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं, किसी ने प्रश्न किया। स्वामी जी कहते हैं उत्तर नहीं मानते, क्योंकि चारों वेद में कहीं नहीं लिखा जिसे से अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखना समुल्लास एक में, ये देखिएगा समुल्लास एक, इसमें स्वयं कहते हैं कि ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये देखना, ये है प्रथमो समुल्लास, और नीचे आइएगा यहीं पर प्रश्न नंबर देखना इसका, 15 पर नीचे देखिए, यहां पर यहीं पर ये क्या कहते हैं, सबसे बड़ा होने से सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये कहते हैं ईश्वर का नाम ब्रह्म है, स्वामी जी करें। अब यहां किसी ने प्रश्न किया कि तुम क्या मानते हो कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, अर्थात ब्रह्म अनेक हैं? स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते। अब देखना ये सप्तम समुल्लास सातवां समुल्लास 151 पृष्ठ है, ये नीचे आइएगा। प्रश्न, वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म समझो, क्योंकि ये ईश्वर बड़ा होने से कारण ईश्वर का नाम ब्रह्म बोल रहे हैं। वेद में ईश्वर अनेक हैं अर्थात ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? स्वामी जी कहते हैं कि उत्तर नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर, ईश्वर माने ब्रह्म, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं ईश्वर सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ईश्वर यानी ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है यानी ब्रह्म एक है। अब स्वामी जी अगले पृष्ठ पर देखना, यहां 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया, सातवां समुल्लास यही सप्तम समुल्लास और ये पृष्ठ 154 पर देखिएगा, 154 पर नीचे यहां लिखा कि किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है वा निराकार, उत्तर स्वामी जी का निराकार। और 155 पर अपने दोनों सिद्धांत दोनों थ्योरी फेल कर दी। ये देखो 155 पे नीचे आइएगा, प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता है फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, वे क्या फिर यूज क्या है इसके करने का? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा क्या फल है बताइएगा, क्या है? उत्तर स्वामी जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव का से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, जय हो महर्षि जी की। अपने सिद्धांत को आप ही फेल कर रहा है, कह रहा है कि उपासना से परब्रह्म, परब्रह्म माने ब्रह्म से नेक्स्ट, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म यानी परब्रह्म, दो भगवान सिद्ध कर दिए, ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा, पर माने नेक्स्ट दूसरा, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना, मेल और साक्षात्कार निराकार से नहीं साकार से, निराकार से तो पहले ही मेल था, उपासना से पहले भी वो अभेद है, उसकी शक्ति निराकार हर जीव से संबंधित है, एक रिज्मा भी एक कण भी खाली नहीं है भगवान की शक्ति के से कोई बचा हो। अब ये दोनों फेल कर दिए, अब ये तो इनके आप पे फेल हो। अब तीसरा सिद्धांत ये दास वेद फेल करेंगे कि पाप अक्षमा नहीं होते, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अब देखिएगा पवित्र यजुर्वेद जो स्वामी दयानंद जी द्वारा ही अनुवादित है, ये देखो नीचे महर्षि दयानंद सरस्वती इसका अनुवादक है, और यहां देखना ये कहां से प्रकाशित है, ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, और कहां से ये छपी है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पट ऑफ दी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। अब यहां देखिएगा अध्याय नंबर 8, ये अष्टमोध्याय आठवां अध्याय नीचे आइए, ये पृष्ठ भी देखिएगा 241 नीचे देखो, इसमें ये आठवें अध्याय का ये तेरहवा मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य। तो यहां इसका आगे चल के यहां अनुवाद किया है 242 पे। ये देखो 242 पृष्ठ पे। तो स्वामी जी कहते हैं, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब यहां पढ़ने वाला जो इस, क्योंकि इनकी सोच थी कि भगवान पाप नहीं काटता, और यहां यजुर्वेद में 6 बार लिखा हुआ है एक ही मंत्र में। यदि एक मंत्र में 1 बार लिखा होता तो स्वामी जी गोलमोल कर देते। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 1 में अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी 2 बार लिखा भगवान से शरीर है, उसको भी गोलमोल कर दिया इन्होंने। अब यहां इन्होंने केवल इतना फर्क अंतर कर दिया कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, यहां मित्र शब्द लिख दिया। तो जनसाधारण पढ़ने वाले ने सोचे मित्र अपने दोस्त के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर देता होगा, इसलिए आदमी नो ध्यान नहीं गया कि यहां ये लिखा है कि परमात्मा मित्र परमात्मा को कहती है। स्वयं बता रहे हैं स्वामी जी के प्रथम अध्याय में मित्र का अर्थ परमेश्वर ही समझना, क्योंकि वो सबका परमेश्वर है, वो ही वास्तविक मित्र है। यहां स्पष्ट किया है, ये देखिएगा वही सत्यार प्रकाश समोल्लास प्रथम। यहां देखो इधर श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 18 पे नीचे प्रसन्न मित्र आदि नाम से सखा और इंद्र आदि देवों से के प्रसिद्ध व्यवहार देखने को मिलते हैं, देखने उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। उत्तर स्वामी जी का, यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने को आता है। इसलिए मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता है। यहां हां गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से भी सुहृदय मनुष्यों का ग्रहण होता है। नीचे देखिए, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करे योग्य है, करने योग्य है, वह परमेश्वर ही सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है, यानी यहां मित्र शब्द परमेश्वर के लिए ही है। इसलिए आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि हम पीछे समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से हमारा और जो हमारा विरोध कर रहे हैं जो आचार्य है, उनका एक समाचार पत्रों में आपस में जो है लेख प्रतिलेख चले थे, तो उन्होंने इस बात को उलझाने के लिए लिखा था कि आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में परमात्मा नहीं लिखा है, मित्र लिखा है। तो वो तो क्योंकि जो इंसान जिसका ज्ञान खत्म हो जाता है वो फिर बकवादों पर आ जाते हैं, वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है और वो अपने आप को बड़े सुपीरियर मान रहे थे, तुम्हारे जैसा ज्ञान नहीं और महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, और मैं को महर्षि दयानंद जैसा तो अज्ञानी कोई मैंने आज तक किसी भी को देखा ही नहीं, इतने महापुरुषों के लेख पढ़े, किसी ने कुछ तो थोड़ी बहुत बात लवा ला रखी है। इनका तो सारी थ्योरी गलत, समाज सुधार पढ़ ले तो रोना आ जावे इंसान को, और उनके विचारों को कोई स्वीकार कर लेता आग लग जाए पूरे समाज में। अब यहां देखिएगा, ये वेद की स्टेटमेंट से और स्वामी दयानंद जी की स्टेटमेंट को दास केवल तुलना कर रहा है, एक ओरिजिनल नोट से डुप्लीकेट नोट की तुलना कर रहा है, नथिंग एल्स। इसको कोई निंदा कहता है तो वो निंदा की परिभाषा से अपरिचित है। यहां देखना, यही आठवें अध्याय का 13वां श्लोक यहां से अनुवाद शुरू होता है स्वामी दयानंद जी द्वारा किया। हे सबके उपकारक, उपकार करने वाले मित्र, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के एनसे शब्द भी देखना, एनसे माने अपराध, अवैजनम, अवैजनम का अर्थ है विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनसे माने अपराध यानी पाप के, अवैजनम माने विनाश करने वाले हो, और पितृकर्तस्य पिता के किए हुए, एनसे माने अपराध ही पढ़ो, यहां पर इन्होंने विरोध आचरण लिखा, यहां पर अपराध ही पढ़ो, अपराध यानी पाप के, अवैजनम माने विनाश करने वाले हो, अच्छे प्रकार हरने वाले हो, एक ही बात है, और आत्म कर्तस्य अपने किए हुए, एनसे माने पाप के, अवैजनम माने दूर करने वाले या नाश करने वाले, असी माने हो, एनसे अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर पाप के भी अवैजनम माने नाश करने हारे हो। हे भगवान, और देखो विद्वान जानता हुआ मैं यत, जो कुछ भी धर्म आचरण यानी धर्म, एन माने पाप होता है, एनस एन पाप कर किया, करता हूं या करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब के एन से माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के हरने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। ओए होए, ये हमारा ओरिजिनल नोट है वेद, और इसमें लिखा है छह बार इकट्ठा ही एक ही मंत्र में प्रमाण दिया है कि घोर पाप को भी परमात्मा नष्ट कर देता है, क्योंकि परमात्मा ने बंदी से स्वयं आकर बताया है कि कुछ पाप हमारे दान से कटते हैं, कुछ सेवा से समाप्त होते हैं, कुछ हमारे संत के दर्शन और आशीर्वाद से पाप नष्ट होते हैं, कुछ पाप हमारे जो बिल्कुल शेष रह जाते हैं, जो किसी प्रकार भी नहीं कट सकते, वो फिर सत्य नाम, इस सच्चे नाम से नष्ट हो जाते हैं।